आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में किया संशोधन। प्रदेश में अब 26 दिसंबर तक भरे जाएंगे गणना प्रपत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की आजमगढ़, वाराणसी और बरेली की विकास परियोजनाओं की समीक्षा। SIR को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में कहा, बढ़ चढ़कर सुनिश्चित करें भागीदारी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वाराणसी में देश के पहले हाइड्रोजन चालित जलयान को दिखाई हरी झंडी। कहा, व्यवसाय के साथ पर्यटन के लिए भी जलमार्ग को अनुकूल बना रही है सरकार। और जन औषधि केंद्र की तर्ज पर प्रदेश में खोले जा रहे हैं पशु औषधि केंद्र। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। एक रिपोर्ट।
निर्वाचन आयोग की संशोधित समय सारणी के अनुसार उत्तर प्रदेश में अवधि 26 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथियों में भी बदलाव किया गया है। प्रदेश के ड्राफ्ट सूची को अब 31 दिसंबर को जारी किया जाएगा। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिडवा ने बताया कि SIR का काम पूरा करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से 2 सप्ताह का समय बढ़ाने का अनुरोध किया गया था, जिसे अनुमति मिल गई। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिडवा ने बताया कि संशोधित तिथियों के अनुसार दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 31 दिसंबर से 30 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। 31 दिसंबर से 21 फरवरी तक गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावों व आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। प्रदेश की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब 28 फरवरी 2026 को किया जाएगा। समाचार कक्ष से तन्वीर फातिमा।
श्री रेणवा ने कल प्रदेश भर के जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से SIR को लेकर समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी विधानसभाओं के मृतक, शिफ्टेड और अनुपस्थित मतदाताओं का एक बार फिर से गंभीरता के साथ सत्यापन कराया जाए। राज्यसभा में चुनाव सुधारों के बारे में कल चर्चा हुई। इसमें भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के दौरान राजनीतिक दलों को नकद चंदे की सीमा 20,000 से घटाकर 2,000 कर दी गई।
पूरे पूर्वी गोलार्ध में यदि एक मेव एब्सोल्यूट वाइब्रेंट एंड कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी है तो वो सिर्फ भारत। आज दुनिया में लोकतंत्र के अंदर सिर्फ 34% जनसंख्या है, जिसमें 17% हम हैं। अर्थात अगर दुनिया में लोकतंत्र है तो उसका सबसे बड़ा स्तंभ आज आधुनिक युग में भी भारत ही है।
कांग्रेस के अजय माकन ने निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग मतदान केंद्रों से CCTV फुटेज नहीं जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को अपनी विश्वसनीयता बहाल करनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी, आजमगढ़ और बरेली में विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया। श्री योगी ने बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रगति की भी समीक्षा की। भारतीय जनता पार्टी के काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जन प्रतिनिधियों से SIR प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग का सहयोग करने की अपील की।
प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आज ये बैठक संपन्न हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य SIR कार्यक्रम को गति देने का, सभी जनप्रतिनिधि सभी कार्यकर्ता मिल करके ये प्रत्येक बूथों पर ऐसे जो अनमैपिंग डाटा है, अभी जो शिफ्टेड है, जो अनट्रेस डाटा है, उनको खोज करके और ये प्रयास करना कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए, ऐसे एक एक मतदाताओं से मिल करके सहयोग करके उनको मतदाता सूची में सम्मिलित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सभी को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल वाराणसी में देश के पहले हाइड्रोजन चालित जलयान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश में निर्मित यह जलयान आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री सोनोवाल ने कहा कि देश में व्यावसायिक के साथ ही पर्यटन के लिए भी जलमार्ग को अनुकूल बनाया जा रहा है।
वाराणसी से हल्दिया तक ना बड़ा स्ट्रेस जो है, सारी स्ट्रेस को हम अधिक ऑपरेशनल बनाने के लिए, चाहे कार्गो हो, चाहे पैसेंजर हो, चाहे क्रूज हो, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की वेसल का हम इसका गतिविधियां बढ़ाएंगे। और आप लोगों ने देखा है पिछले 11 साल में जो बदलाव संभव हुआ है, ये सिर्फ इसलिए संभव हुई है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो दूरदर्शी नेतृत्व है, जो कुशल नेतृत्व है, उनके नेतृत्व ने आज सभी विभाग को, सभी मंत्रालय को आज शक्ति दी है, दिशा दी है।
वातानुकूलित क्रूज में कई आधुनिक सुविधाएं हैं। करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस जलयान में 50 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसमें सुरक्षा के भी व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। केंद्र सरकार के पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत देश भर में पशु औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। यह व्यवस्था प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की तर्ज पर लागू की जाएगी। अमरोहा जिले में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। अमरोहा की मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आभा दत्त ने बताया कि योजना के संबंध में शासनादेश आ चुका है। पशु औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। वाराणसी के बौद्ध भिक्षुओं ने धमेक स्तूप में दित्वाह चक्रवात में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति और बेघर हुए लोगों के संबल के लिए प्रार्थना की। बौद्ध भिक्षु सुमेध थेरो ने इस आपदा में श्रीलंका के लोगों को भारत से मदद भेजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया।
भारत में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले आगे आकर श्रीलंका में इसी भयंकर घटना से आगे आने के लिए और पूरा मदद कर लिया, सामग्री भिजवाया, और इसलिए पूरा भारत में बौद्ध सोसाइटी, मंदिर, संस्था, सभी लोग तरफ से, वर्ल्ड बुद्धिस्ट कम्युनिटी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं भारत सरकार को धन्यवाद देने के लिए इसी अवसर पर ये पूजा आयोजन।
केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम के तहत कल आयोजित शैक्षणिक सत्र को संबोधित किया। एक रिपोर्ट।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कुशल पेशेवरों और शिल्पकारों के लिए आयोजित 5वें शैक्षणिक सत्र में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम देश के दो प्राचीन और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को अद्भुत रूप से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु से आए किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला का दर्शन पूजन किया। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
केंद्र की 21 नवंबर को लागू की गई नई श्रम संहिताएं पूरे भारत में श्रमिकों की आजीविका को स्थिरता प्रदान करने के लिए हैं। एक रिपोर्ट।
ये सुधार खनन, रासायनिक, पेट्रोलियम, धातु कर्म और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य जोखिम आकलन पेश करता है। अब नियोक्ताओं के लिए सुरक्षा उपकरण और बेहतर स्वच्छता की सुविधाएं, साथ ही प्राथमिक उपचार प्रदान करना अनिवार्य है। इसके अलावा नौकरी से पहले, समय पर और जोखिम के बाद मेडिकल जाँच अनिवार्य है और मजदूर मुफ्त सालाना स्वास्थ्य जाँच के हकदार है। ये सुधार गर्भवती महिलाओं और किशोरों को जीवन घातक उद्योगों से बचाते हैं, जिससे सुरक्षित श्रम कार्यशैली को मजबूती मिलती है। दृष्टि के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रदेश के लगभग सभी जिलों में ठंड के मौसम ने जोर पकड़ लिया है। अधिकांश जिलों में तापमान में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है और कोहरे का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। पूर्वी जिलों में कोहरे के चलते धूप की चमक भी प्रभावित हो रही है। इससे रात के साथ साथ दिन का तापमान भी गिर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिन तक घना कोहरा पड़ेगा और ठंड में बढ़ोतरी होगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में किया संशोधन। प्रदेश में अब 26 दिसंबर तक भरे जाएंगे गणना प्रपत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की आजमगढ़, वाराणसी और बरेली के विकास परियोजनाओं की समीक्षा। SIR को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में कहा, बढ़ चढ़कर सुनिश्चित करें भागीदारी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वाराणसी में देश के पहले हाइड्रोजन चालित जलयान को दिखाई हरी झंडी। कहा, व्यवसाय के साथ पर्यटन के लिए भी जलमार्ग को अनुकूल बना रही है सरकार। और जन औषधि केंद्र की तर्ज पर प्रदेश में खोले जा रहे हैं पशु औषधि केंद्र। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।